सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दीयध्वनियुलोकहितवमाडिदे ಮೂರುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಗುಲುಕದಲ್ಲಿಯ ರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की ದಿವ್ಯತೆ ಕ್ರೀಡತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಶೇಷು ವಾ ಇತಿ ದೇವ ದೇವ ಶಬ್ದ ಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋತಿ ಹೇ ಜೋ जन्म से लेकर मरण पर्यंत इंद्रिय विषयों में रमन करते हैं इंद्रिय विषयों का त्याग जहां पर संभव नहीं है ऐसी क्रीड़ा इंद्रिय विषयों की क्रीड़ा कहलाती है त्याग करने के पश्चात जो आत्म सुख में क्रीड़ा हो सकती है वह वहां न होने से देवों को देव ऐसा नाम प्राप्त है संज्ञा प्राप्त है ऐसे देवों का यहां वर्णन चल रहा है उनके भेदों का कथन है वैमानिक देवों के दो भेद बताए थे कल्पोपपन्न देव और कल्पातीत देव कल्पोपपन्न यानी इंद्र सामानिक इत्यादि दस प्रकार के जो भेद हैं तत्वार सूत्र में बताए जाते हैं उन दस भेदों सहित जहाँ कल्पना है वह कल्पना वैमानिक देवों में कल्पवासी देवों की कल्पना है कल्पातीत देवों में नौ ग्रवेग के देव नौ अनुदिश के देव और पांच अनुत्तर विमानवासी देव आते हैं नौ ग्रवेग के जो देव होते हैं वे कल्पवासी देवों से अधिक आयु वाले अधिक सुख वाले अधिक वैभव वाले होते हैं और इनसे ज़्यादा सुख आयु वैभव इत्यादि नव अनुदिश वासी देवों में पाया जाता है। पांच अनुत्तर विमानों में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि पांच अनुत्तर विमानवासी देवों में नव अनुदिशवासी देवों से भी अधिक आयु, वैभव, इंद्रिय सुख इत्यादि होता है। इस प्रकार से देवगति में जहाँ भी देखें वहाँ इंद्रिय सुख तो है, लेकिन आत्म सुख की कल्पना वहाँ पर नहीं है। आत्म सुख की कल्पना तो एकमात्र मनुष्य गति में करना चाहिए। त्रेंच गति में भी आत्म सुख की उपलब्धि नहीं होती। नरक और देवगति में इसकी चर्चा नहीं है। भोग भूमि तो भोग भूमि है, भोग भूमि में भी इंद्रिय विषय के अलावा कोई भी त्याग, तप और आत्मा का सुख, परमार्थ की चर्चा वहाँ पर नहीं हो सकती। म्लेच्छ खंडों में भी, जो आर्य खंड से भी ज़्यादा संख्यक म्लेच्छ खंड हैं, 850, 170 आर्य खंड हैं, 850 म्लेच्छ खंड हैं, तो संख्या की अपेक्षा से देखें तो इंद्रिय सुख वाले मनुष्य और इंद्रिय सुख वाले क्षेत्र बहुत अधिक हैं, बहुत ही अधिक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह स्वाभाविक रूप से ही चिंतन करने को विषय प्राप्त होता है कि इंद्रिय सुख सुलभ हैं या आत्म सुख सुलभ है। इंद्रिय सुख सुलभ है, तीन लोक में कहीं भी जन्म ले लें, इंद्रिय सुख की उपलब्धि हो जाती है, लेकिन आत्म सुख पाने के लिए इसी गति में आना पड़ता है। किस गति में? मनुष्य गति में आना पड़ता है। और मनुष्य गति में भी आने के उपरांत, आर्य खंड में जन्म लेने के उपरांत, अगर हम आर्य म्लेच्छ बनते तो बहुत कठिन था। वहाँ इंद्रिय सुख सुलभ है, आत्मिक सुख दुर्लभ है। आर्य खंड में पैदा हो गए हैं, आर्य खंड में पैदा होने के बाद भी हमारे लिए यदि मनुष्य पर्याय न मिलकर स्त्री पर्याय प्राप्त होती है तो आत्म सुख दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हुआ, मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के उपरांत संयम धारण करने लायक शरीर नहीं मिला, रोगी शरीर मिल गया, तो पुरुष पर्याय मिलने के बाद भी आत्म सुख से वंचित रहना पड़ता है। इस प्रकार से आत्म सुख की दुर्लभता बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। आत्मा को अनादिकाल से सांसारिक सुख को अनुभव करने की आदत पड़ी हुई है। इंद्रिय सुख के पीछे ही वो दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते थकता तक नहीं है, दौड़ते दौड़ते बस बस बहुत हो गया, अब मुझे चाहिए नहीं, ये तक नहीं कहता। तो इंद्रिय सुख ये आत्म जनित हैं, आत्मा के लिए हैं या शरीर के लिए? शरीर के लिए हम दूसरे को ही सुखी बनाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं अनादि काल से। इतनी बात तो समझ में यहाँ तक आ गई है, लेकिन अब हम आत्मा के सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह चिंतन हमारा निरंतर चल रहा है। यह चिंतन चलते चलते एक दिन वह अपने जीवन में साकार हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम अगर इस क्षेत्र में सफल हो गए तो तीन लोक को जीत गए। जहां जहां हमारा जन्म हुआ था उन जन्म स्थानों को सब जीत लिया। नरक जीता गया, देवगति जीता गया, म्लेच्छ खंड जीते गए, स्त्री पर्याय जीता गया, मनुष्य पर्याय भी जीता गया, रोगी अवस्था जीता गया और निरोग अवस्था में संयम की अनुभूति निरंतर हम करने लगे। ऐसी अवस्था कब आएगी? अजितनाथ भगवान आज आए, उनसे प्रार्थना करो। भगवान आने से हमको बोलने के लिए अब बल मिलेगा। पास में बैठे हैं अनंत सुख के धनी, और उनके रास्ते पर हम चल रहे हैं, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस तत्व को यहाँ से प्रसारित करने में कितना बड़ा आनंद आएगा भगवान के सानिध्य में। और हम बोल रहे हैं, 10 दिन बोलेंगे, 10 धर्मों का रस चखाएंगे, लेकिन बोली का रस असली रस नहीं होता। बोली अलग है और चॉकलेट गोली अलग है। जब आप गोली खाएंगे तभी रस मिलेगा, गोली नहीं खाएंगे तो चूस नहीं सकते। केवल बोली को कानों से सुन करके हम आत्मा का आनंद ले नहीं सकते। प्रयत्न और पुरुषार्थ संयम की ओर आपका हो तो आपके लिए भी वह धीरे धीरे आत्मिक सुख की उपलब्धि हो सकती है। देवों के जो कल्पातीत देव हैं उनके 3 भेद करने चाहिए। किस अपेक्षा से? ये गुणस्थान की अपेक्षा से 3 भागों में विभाजित हैं। 9 ग्रह एक देव, 9 अनुदिश देव और 5 अनुत्तरवासी देव। इस प्रकार के कल्पातीत देव दिन 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेवेक में उत्पन्न होने वाले मनुष्य सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो चल सकता है। मिथ्या दृष्टि हो तो नियम से द्रव्यलिंग को धारण करने वाले दिगंबर मुनि होना चाहिए, ये नियम है। और अनुदिश में जाना हो, उत्पन्न होना हो तो भी दिगंबर होना चाहिए, लेकिन भावलिंगी मुनि ही अनुदिशों में जन्म लेते हैं। और 5 अनुत्तर में जन्म लेना हो तो वहाँ पर बात तो इतनी विशेष हो जाती है कि अनुदिशों में जन्म लेने वाला जीव ज़्यादा से ज़्यादा 2 मनुष्य भव धारण करके संसार से मुक्त होता है, या कम से कम 1 भव को धारण करके मुक्त होता है। 1 भव को धारण करके मुक्त होने वाले जीव सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं, और 2 भव से मुक्त होने वाले जीव सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर शेष 4 विमानों से आते हैं। इस प्रकार यह देवगति का वर्णन है। इस देवगति में अब स्वर्गों में देवों की आयु लेशा कितनी होती है इसकी जानकारी थोड़ा लेंगे। नीचे विशेषार्थ में लिखा है, स्वर्गों की आयु युगल क्रम से, युगल का मतलब 2-2 स्वर्ग, सौधर्म ईशान, इन 2 स्वर्गों में देवों की जगन्य आयु साधिक 1 पल्ले है, यानी कुछ अधिक 1 पल्ले। पल्ले की आयु कहाँ होती है? विशेष रूप से मनुष्य गति में देखें तो भोग भूमि में पल्योपम की आयु होती है, और जगन्य आयु तो संख्यात वर्ष की भी हो सकती है, लेकिन प्रधानता से देखें तो संख्यात असंख्यात वर्ष वाले देव भोग भूमि के मनुष्य होते हैं। असंख्यात वर्षायुष की लिखा जाता है, लेकिन 1 पूर्व कोटि से अधिक 1 समय को भी हम बढ़ाते हैं तो असंख्यात वर्षायुष की कोटि में वो आते हैं, जगन्य आयु भोग भूमि जीवों की असंख्यात वर्षायुष। अब 1 पूर्व कोटि से अधिक 1 समय आयु को भी लेंगे तो उनको असंख्यात वर्षायुष ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो संख्यात वर्षायुष होते हैं, भोग भूमि के जीवों को संख्यात वर्षायुष नहीं कहा, असंख्यात वर्षायुष ही कहा है। स्वर्गों में साधिक 1 पल्ल आयु होती है, इससे कम आयु वाले कोई देव नहीं होते। किससे कम? हाँ, 1 पल्ल से अधिक वाले आयु होते हैं, 1 पल्ल से कम आयु वाले कोई भी नहीं होते, लेकिन 1 पल्ल से कम आयु वालों को देखना चाहे और देवगति में देखना चाहे तो भवनत्रिक में हम देख सकते हैं। वहाँ पर जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है और अधिक से अधिक 1.5 पल्ल आयु वाले हैं। 1.5 पल्ल आयु वाले कौन हैं? ज्योतिष्क देव, ज्योतिष्क देव हाईएस्ट आयु वाले हैं भवनत्रिक में। 1.5 पल्ल से लेकर आया था ना 1 सागर तक, उत्कृष्ट आयु कम से कम 1.5 पल्ल और अधिक से अधिक 1 सागर की आयु होती है। इसी प्रकार प्रथम युगल में वैमानिक देवों में स्वर्ग में प्रथम युगल में साधिक एक पल आयु और साधिक दो सागर की आयु होती है। दूसरे युगल में साधिक दो सागर, तीसरे युगल में साधिक सात सागर, चौथे युगल में साधिक दस सागर, पांचवें युगल में साधिक चौदह सागर, छठे युगल में साधिक सोलह सागर, सातवें युगल में साधिक अठारह सागर और आठवें युगल में साधिक बीस सागर की आयु होती है। ये कैसे आयु? जगन्य आयु, जगन्य आयु है ये है? नहीं नहीं, जगन्य आयु पहला दिया है, फिर उत्कृष्ट आयु देंगे। ये उत्कृष्ट आयु आगे की है। अब पुनः कहेंगे प्रथम युगल में उत्कृष्ट आयु कितनी? दो सागर की। जगन्य आयु कितनी थी? साधिक एक पल, साधिक एक पल, और उत्कृष्ट आयु साधिक दो सागर की आयु होती है। दूसरे युगल में साधिक सात सागर की आयु होती है। तीसरे युगल में साधिक दस सागर की आयु होती है। चौथे युगल में साधिक चौदह सागर की आयु होती है। पांचवें युगल में साधिक सोलह सागर की आयु होती है। छठे युगल में साधिक अठारह सागर की आयु होती है। सातवें युगल में बीस सागर की आयु होती है, साधिक नहीं है, केवल बीस सागर की आयु होती है। आठवें युगल में साधिक नहीं है, बराबर 22 सागरोपम की आयु होती है। ये हो गया स्वर्गों की आयु। स्वर्गों में कम से कम आयु साधिक एक पल से लेकर 22 सागर तक आयु होती है, 16 स्वर्ग तक। आज पंचम काल में भी उत्कृष्ट आयु को बांधकर 16 स्वर्ग में व्यक्ति जन्म ले सकता है और वहां 22 सागरोपम की आयु है। नव ग्रहवेक में जगन्य आयु कितनी है? साधिक 22 सागर की आयु, साधिक बोलना चाहिए, और 16 स्वर्ग में बराबर 22 आयु, 22 सागर की आयु। साधिक क्यों? यदि 22 सागर कहते तो 16वें स्वर्ग के आयु में और ग्रहवेक के आयु में फर्क नहीं होता, इसलिए साधिक, साधिक 22 सागर की आयु होती है। दूसरे स्वर्ग में, दूसरे युगल में साधिक 23 सागर की आयु होती है। तीसरे युगल में साधिक 24 सागर की आयु होती है। चौथे युगल में साधिक 25 सागर की आयु होती है। पांचवें युगल में साधिक 26 सागर की आयु होती है। छठे युगल में साधिक 27 सागर की आयु होती है। सातवें युगल में कितना? साधिक 28 सागर की आयु होती है। आठवें युगल में साधिक 29 सागर की आयु होती है। ये क्या हो गया? हाँ, नौ ग्रहवेक है ना, युगल नहीं है, युगल नहीं है, ये युगल लगा करके बोला गया, गलत हो गया। नवे ग्रहवेक में ठीक, हाँ, पहले ग्रहवेक में, दूसरे ग्रहवेक में, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, अब नौवे, नवे ग्रहवेक में साधिक 30 सागर की आयु होती है। ये हो गई जगन्य आयु। उन्हीं ग्रहवेकों में अब उत्कृष्ट आयु को बताते हैं। पहले ग्रहवेक में 23 सागर की आयु, उत्कृष्ट आयु। देखो जगन्य कितनी थी? 22। उत्कृष्ट कितनी? एक सागर आयु अधिक है। दूसरे ग्रहवेक में 24 सागर की आयु है। तीसरे ग्रहवेक में 25 सागर की आयु है। चौथे में 26 सागर की, पांचवे में 27 सागर की, छठे में 28 सागर की, सातवे में 29 सागर की, आठवे में 30 सागर की, नौवे में 31 सागर की। इस प्रकार 31 सागर की आयु तक आयु नव ग्रहवेक में है। 16 स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 22 सागर, 9 ग्रवेक में उत्कृष्ट आयु 31 सागर। अब चलते हैं 9 अनुदिश में, 9 अनुदिश में जघन्य आयु, प्रत्येक में मात्र साधिक 31 सागर की उत्कृष्ट 31 सागर की आयु है, और उत्कृष्ट आयु प्रत्येक विमान में 32 सागर की आयु है। एक सागर का फर्क है केवल जघन्य और उत्कृष्ट में। 5 अनुत्तर विमानों में जघन्य आयु एक पहले विमान से चौथे विमान तक, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर पहले से चौथे विमान में सागरोपम साधिक 32 सागर की आयु होती है। 4 विमानों में 32 की, यहाँ पर साधिक लिया है और पीछे साधिक नहीं लिया है, नवानुदेश में साधिक नहीं होती, यहाँ पर साधिक 32 सागर की आयु होती है। उत्कृष्ट आयु पहले विमान से लेकर पांचवें विमान तक 33 सागर की आयु होती है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं है, कितनी आयु होती है 33 सागर की आयु होती है। शेष विमानों में जघन्य उत्कृष्ट का भेद है, किंतु सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं है। ये है आयु की बात। साधिक है ना, कुछ अधिक, साधिक अधिक से सहित, साधिक स अधिक, अधिक से सहित, कितनी अधिक, कुछ अधिक। हाँ, अब पेज पलटाएं, नरक नरक गति, नरक व्यवस्था, संदृष्टि क्रमांक 13। नरक पृथ्वियों में नारकी जीवों में एक पर्याप्तक और दूसरा निवृत्ति अपर्याप्तक, दो ही भेद होते हैं। कौन सा भेद यहाँ नहीं है? अपर्याप्तक नहीं है, नारकी जीव अपर्याप्तक वाले नहीं होते। यहाँ पर विशेष जानकारी है नरकों की, पृथ्वी प्रथम पृथ्वी उसमें रहने वाले प्रस्तर रहने पटल, और उन पटलों में रहने वाले नारकी के निवास बिल, यानी जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं, बिल में उत्पन्न होते हैं, उनके योनि स्थान बिल में पाए जाते हैं। पटल यानी एक विस्तृत प्रदेश, उन प्रदेशों में कितने ही प्रकार के, कितने ही आकार के बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, गड्ढे, इन गड्ढों को पटल बोला जाता है। ऐसा समतल होता है और ऊपर से नाना प्रकार के त्रिरेंचों के आकार के गड्ढे होते हैं, और कैसे गड्ढे होते हैं, ऐसे आते हैं त्रिकोण से, ऊपर आकार हाथी के आकार का रहेगा या घोड़े के आकार का रहेगा या गधे के आकार का रहेगा, त्रिरेंचों के जो शरीर का आकार है उस आकार के गड्ढे हैं, किंतु नीचे जाते जाते वो नली होती है ना, आप लोग वो छानते हैं तेल छानने की नली, क्या बोलते हैं उसको, उसके जैसे ऐसे बिल होते हैं, उन बिलों में जाकर के आत्मा प्रवेश करती है, सर्वप्रथम बिल में गिर जाती है, फिर बहुत इतनी जोर से गिरती है, गिर जाती है, फिर उछलती है गिरने के बाद, फिर नीचे, फिर ऊपर, जैसे बाल फुटबॉल, इसकी जानकारी लेंगे क्या क्या है। प्रस्तर, प्रस्तर कितने हैं, पहले नरक में प्रथम नरक में 13 प्रस्तर होते हैं। बिल कितने होते हैं? 30 लाख, कोई कम थोड़ी, कभी भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। एक योजन प्रमाण क्षेत्र है वो पटल का, ये प्रथम पटल। जैसे नरक की कल्पना ऐसी है, देखो यहां से लेकर यहां तक नरक पृथ्वी है, ये प्रथम नरक है। अब बहुल भाग जिसको कहते हैं, अब बहुल भाग नामक प्रथम नरक का नाम है ये। अब इसमें 13 पटल, पटलों की व्यवस्था। ये प्रथम पटल, उसके नीचे द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ, पंचम, ऐसे 13 पटल। उन पटलों में सब जगह गड्ढे हैं। कितने बिल हैं? 30 लाख। 13 पटलों में कुल बिलों की संख्या 30 लाख है। प्रत्येक पटल में कितने बिल हैं उनको विभाजन किया जा सकता है, यहां नहीं किया। कुल पटल का, पटल की संख्या बताई है, 13 पटलों में 30 बिल होते हैं। वहां जीव की उत्पत्ति होती है। उनका जन्म कौन सा जन्म? उपपाद जन्म। उपपाद जन्म से लेते समय वे दुख के साथ, संक्लेश के साथ जन्म लेते हैं, और जन्म के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक संक्लेश परिणामों से व्यतीत होता है। शरीर की ऊंचाई, नारकी जीवों के शरीर की ऊंचाई प्रथम नरक में 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल वाले नारकी जीव होते हैं। 7 धनुष का मतलब 6 फुट का एक धनुष, 6 फुट का एक धनुष, 6 सत्ते 42 फुट, 3 हाथ 6 अंगुल वाले नारकी जीव होते हैं। 42 फुट आप जाएंगे तो नारकी जीवों को यूं देखना पड़ेगा, 42 फुट हैं वो। नीचे नीचे ऊंचाई बढ़ती जाती है। 7वें नरक में नारकी जीव कितने ऊंचे हैं? 500 धनुष, आदिनाथ भगवान के बराबर है। कर्म भूमि में जो उत्कृष्ट अवगाहना होती है वही अवगाहना 7वें नरक में जाने वाले जीव चतुर्थ काल में ही हो सकते हैं, यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से। और वज्र ऋषभ नारा सनन धारी ही हो सकते हैं, और कर्म भूमि है ये। कर्म भूमि में, भूमि की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी होती है? 500 धनुष की। तो जितने हैं यहाँ उतने ही वहां रहेंगे, उस आकार में चेंजेस नहीं होगा। यदि प्रथम नरक में जा रहे हैं तो 500 धनुष से मरकर, यहाँ मनुष्य पर्याय से उत्कृष्ट अवगाहना से मरकर वहां उत्पन्न होंगे तो 42 फुट के बनेंगे। 42 फुट, 3 हाथ 6 अंगुल। और 7वें नरक में जाएंगे तो यहां पर भी 500 धनुष थे, ज्यों का त्यों जाएंगे 500 धनुष के ही होकर के जन्म लेंगे। नीचे नीचे नरकों में धीरे धीरे अवगाहना बढ़ती जाती है, शरीर की ऊंचाई बढ़ती गई है। रत्न, अब क्या, आयु, आयु कितनी होती है? उत्कृष्ट आयु होती है 1 सागर की, और जघन्य आयु होती है 10,000 वर्ष। नरक जाएंगे तो 10,000 वर्ष से पहला लौटना संभव नहीं है। नरक से लौटेंगे तो यहीं लौटेंगे, या तो तिरंच गति में पंचेंद्री संगी, पंचेंद्री तिरंच बनेंगे, या तो मनुष्य बनेंगे, वो भी गर्भज मनुष्य ही बनेंगे, समूर्छन मनुष्य नहीं बनेंगे। नरक से आने वाले जीव केवल 2 ही स्थान पर आते हैं, एक त्रिरंश गति और एक मनुष्य गति। इसमें भी गर्भज ही बनते हैं, समूर्छन नहीं बनते। गर्भज संगी पंचेंद्री गर्भज त्रिरंश ही बनते हैं। दस हजार से लेकर 1 सागर तक की आयु प्रथम नरक में। उनकी लेशा कौन सी लेशा होती है? जघन्य लेशा, कापोत लेशा है। कापोत लेशा भी जघन्य है, उत्कृष्ट नहीं। कृष्ण नील कापोत, तीन लेशा में से एक लेशा कापोत लेशा होती है। वेदना अधिक से अधिक वहां पर वृद्धि रूप से, निरंतर वृद्धि रूप से वेदना, कौन सी वेदना होती है? तीव्र उष्ण वेदना। और यह उष्ण वेदना प्रथम नरक में कम है, द्वितीय नरक में उससे ज्यादा, तृतीय नरक में उससे ज्यादा, और चौथे नरक में उससे ज्यादा। चौथे नरक तक उष्ण वेदना को सहन करते हैं नारकी जीव। बहुत गर्मी होती है, उसके जमीन के स्पर्श से ऐसा लगता है जैसे तवे में पैर रख दिया, तपा हुआ तवा होता है, उससे भी ज्यादा करोड़ गुना गर्म हीट वहां पर, कैसे सहन करेंगे महाराज जी? सब सुनकर के विश्वास नहीं होता, इतना गर्म कैसे रहता होगा वहां? तो जा करके देख सकते हैं, भगवान ने तो कहा है। भगवान ने कहा है तो ये तो अन्यथा नहीं हो सकता। शक्ति है, हाँ, वैकृत शरीर है, शक्ति है, रहता है, लेकिन पीड़ित होकर के रहता है। उतनी उष्ण वेदना हम यदि यहाँ सहन करेंगे ना, तो आयु कर्म की उदीर्ण होगी और अकाल मरण हो जाएगा। लेकिन वहां पर वैकृत शरीरधारी जीव का कोई अकाल मरण हो नहीं सकता, सतत सहन करना पड़ेगा, सहते ही जाना पड़ेगा, प्रति सेकंड सहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बादल हो गए जरा हाँ शीतलता मिल रही है एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं है। जीव नरक क्यों जाता है? पंच पापों में रमन करने से, तीव्र आसक्ति धारण करने से, पंचेंद्रिय विषयों के भोग में हाय हाय त्राय त्राय, हाय हाय त्राय त्राय करने से, परिग्रह का संग्रह करते हुए। काय परिग्रह क्या है? ये इंद्रिय विषय तो हैं। इस परिग्रह में ज्यादा डूबने वाले जीव, संग्रह करने वाले जीव नरकायु का बंद करके नरक गति में जन्म लेते हैं। बिल्कुल सत्य है ये, इसमें कोई शंका मत करो, भगवान बैठे हैं। कुछ शंका हो तो आज आदित्यनाथ भगवान से पूछो कि भगवान महाराज जो बता रहे कि ठीक है क्या? भगवान हमारे पक्ष में रहेंगे, आपको ये कहेंगे शंका क्यों करते हो, मैंने ही जो कुछ कहा है वो भगवान महाराज वही कह रहे हैं, हमारे पक्ष में रहेंगे। तो नरक किन कारणों से हम जाते हैं, उन कारणों को हम हटाएंगे तो नरक न जाते हुए स्वर्ग जा सकते हैं, मनुष्य गति में जा सकते हैं, त्रेंच गति में भी समझ के ले चले कि सुख है, बहुत सुख है नरक की अपेक्षा। तो इतनी उष्ण वेदना त्रेंच गति में कहाँ है? नरक में तो त्रेंच जीव नहीं है, पंचेंद्रिय चिरें जिनको वो उष्ण वेदना सहन कर सकते, पंचेंद्रिय तिरंश तो यही है और विकलत्रय भी यही है। विकलत्रयों को और पंचेंद्रिय जीवों को जो उष्णता उष्ण वेदना का अनुभव होना चाहिए वो यही जो कुछ करते हैं, यहीं पर सूर्य चंद्र से जो उष्णता मिलती है उतना ही, वहां पर करोड़ों सूर्य की उष्णता भी ज्यादा उष्णता वहां है, कैसे सहन करते होंगे? लेकिन है, उस उष्ण वेदना को भी सहन करने लायक शरीर है। कौन सा शरीर? वैकृत शरीर। नारकी जीव जा करके जब कहीं पानी इत्यादि में वो हाथ डालते हैं तो वो भी इतना गर्म रहता है और इतना बदबूदार, इतना जहरीला रहता है कि उसके हाथ ही गल जाते हैं, हाथ गल गए और पानी पीने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा था, प्यास लगी थी तो हाथ ही गल गए, पानी नहीं आया, हाथ कट गए, यूं कर गया, पानी नहीं आया। नारकी जीव वस्त्र सहित होते हैं कि वस्त्र रहित होते हैं? इतनी गर्मी है, उष्ण है, और तो वस्त्र टिकेंगे कैसे वहां? कोई वस्त्र नहीं, सब नारकी जीव प्रथम नरक से लेकर सप्तम नरक तक नारकी जीव सभी नग्न वेशधारी होते हैं। उनका आकार प्रकार कैसा होता है? सेम मनुष्यों जैसा, सेम मनुष्य जैसा, लेकिन वो वैकृत शरीर और हमारा औदारिक शरीर, इतना ही अंतर। उतनी वेदना को सहन करने की शक्ति उस शरीर में है। दूसरा कोई नारकी जीव आता है, हथियार लेकर के आता है और एक दूसरे में संघर्ष हो जाता है। उस संघर्ष में एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव को हथियार बना करके काट लेता है। जिसको जो काट रहा है उसका थोड़ा बहुत पुण्य का उदय, और जो कट रहा है तीव्र पाप का उदय। और इसका भी पाप कर्म का उदय होता है तो उधर से चार और दौड़ करके आते हैं। 30 लाख बिलों में से हजारों नारकी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, प्रति समय चल रहा है उत्पन्न होना। 30 लाख बिल हैं और प्रत्येक बिल में कोई ना कोई यहाँ से मरण करके वहाँ पर उत्पन्न हो ही रहा है। कहाँ कहाँ से जा रहे हैं? 850 म्लेच्छ खंडों से और 170 आर्य खंडों से नरक जाते हैं। बस ये नरक जाने के स्थान हैं, और कहाँ से जाते हैं? स्वर्ग से तो नरक नहीं जाते, भोग भूमि से नरक नहीं जाते, केवल आर्यखंड कर्म भूमि से ही नरक जाते हैं। तो म्लेच्छ खंड भी कर्म भूमि कहलाते हैं और 170 आर्यखंड भी कर्म भूमि। यहां से जीव नरक जाते हैं, इसका नाम कर्म भूमि है। कर्म भूमि क्यों है? कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है, या तो पुण्य करता है या तो पाप करता है। पुण्य या पाप, इन दो में से एक करने के लिए जो भूमि मिलती है उस भूमि का नाम कर्म भूमि। हमको करने के लिए मिला है, करने के लिए मिला है, और जीव सदा पूछता है क्या करना चाहिए। काम नहीं है हमको, कुछ काम बताओ। तो काम बता दिया तो वो काम दो प्रकार का रहता, या तो अशुभ का या तो शुभ का, इन दो में से एक को करता है। शुभ काम करेगा तो या भोग भूमि में जाएगा या तो देवगति में जाएगा, ये शुभ कर्म का फल है। भोग भूमि स्वर्ग यानी देवगति और नरक गति, ये तीन स्थान ऐसे हैं, ये जेल हैं, इनको जेल कहना चाहिए। कौन कौन सी भूमि को? देवगति के देव क्षेत्र को, भोग भूमि के भू प्रदेश को, और नरक गति के नरक क्षेत्र को। क्या कहना चाहिए? जेल, जेल। हाँ, जेल है। जेल में क्यों जाता है जीव? शिक्षा भोगने के लिए। और गलती कहाँ करता है? कर्म भूमि में। और अच्छा कार्य कहाँ करता है? कर्म भूमि में। यहाँ अच्छा करेंगे तो भी जेल जाएंगे, ऐसा नियम है प्रकृति का। अच्छा काम करेंगे तो भी जेल जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो भी जेल जाएंगे। और इसी कर्म भूमि में अच्छा और बुरा दोनों ही कर्मों को छोड़कर जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठेंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, किसी जेल में नहीं जाएंगे। कर्म ही धर्म है।
करने से दोनों फल मिल जाए।
हाँ, कर्म ही धर्म है, अशुभ कर्म अधर्म है, शुभ कर्म शुद्ध कर्म के शुद्ध धर्म के उत्पत्ति में सहायक है। शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म को भी त्याग कर शुद्ध में लीन होना चाहिए, तब निर्वाण की प्राप्ति होती है। अधर्म किसे कहें? अशुभ को अधर्म कहना चाहिए, उसको तो पहले त्यागना चाहिए। अशुभ क्या है? पांच इंद्रियों का रमन, परिग्रह का ग्रहण, जीव के अशुभ परिणाम जिसके वजह से होते हैं, वह कर्म ही अशुभ धर्म है। जिससे जीव को पाप का बंध होता है वह अधर्म है। जिन कार्यों से, जिन परिणामों से जीव को पाप कर्म का आश्रय और बंध होता है वह अधर्म की कोटि में है। और जीव को जिन कर्मों को करने से पुण्य का बंध, पुण्य का आश्रय और बंध होता है और शुभ परिणाम होते हैं, उसको शुभ धर्म कहना चाहिए। जैसे पांच पापों को त्याग कर पांच महाव्रतों को ग्रहण किया, हिंसा को त्याग कर अहिंसा को ग्रहण, अहिंसा का ग्रहण, असत्य को त्याग कर सत्य का ग्रहण, चोरी को त्याग कर अचोरी का ग्रहण, कुशील को त्याग कर सुशील का ग्रहण, और परिग्रह को त्याग कर अपरिग्रह का ग्रहण जब होता है तब हम शुभ कार्य में लीन हो जाते हैं। ये शुभ कार्य शुभाश्रव का कारण है, क्योंकि ये सब करते समय शुभ परिणाम होने से पुण्याश्रव होता है। ये पुण्याश्रव आवश्यक है कि अनावश्यक है? हाँ, ये भी अनावश्यक, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए ये आवश्यक है। हाँ, ये भी आवश्यक अनावश्यक, लेकिन पाप को छोड़ने का मार्ग कौन सा? सीधा शुद्ध में जाओगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तक ये नहीं हुआ है किसी मुनि को, जो दीक्षा लेते हैं उनको व्यवहार धर्म को ही पहला स्वीकार करना पड़ा। जब उन्होंने दीक्षा ली स्टेज पर, किसको छोड़ा? अधर्म को छोड़ा, परिग्रह को छोड़ा, किसको छोड़ा? परिग्रह पहला छोड़ा। तो परिग्रह मैं छोड़ता हूं ये विकल्प आए बिना परिग्रह छोड़ा क्या? विकल्प आने के बाद ही छोड़ा ना। तो परिग्रह मैं छोड़ना चाहता हूं या छोड़ता हूं, ये जो भावना भा रहा है, ये भावना भाते समय भी शुभाश्रव हो रहा है, और संकल्प जिस समय वह करता है तब महावृत्ति बनता है। संकल्प करते वक्त भी, करने के बाद भी शुभ परिणाम निरंतर बने रहते हैं। कम से कम अंतर मुहूर्त तो बने रहेंगे ही शुभ परिणाम, और इन शुभ परिणामों को शुभ परिणाम समझकर, क्योंकि ये भी आश्रय और बंध में कारण है, इससे भी मुझे ऊपर उठना चाहिए, ऐसा चिंतन करके जब वह आत्मा का सहारा लेकर अशुभ शुभ प्रवृत्ति को भी त्याग देता है, छोड़ देता है, तो अपने आप में शुद्धोपयोग में प्रतिष्ठित होता है। अशुभ को त्यागे बिना शुभ की उत्पत्ति नहीं होती, और शुभ के प्रवृत्ति को छोड़े बिना शुद्ध में प्रवेश नहीं होता। हम ये कोशिश करें कि शुभ की ओर तो हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि व्रतादि को तो लेना नहीं चाहता है मन कभी भी, अनादिकाल से इंद्रिय विषयों से संस्कारित है ना, उसको वो छोड़ना इष्ट नहीं लगता, लेकिन शुद्ध में प्रतिष्ठित होना बहुत अच्छा लगता है। तो डायरेक्ट हो जाओ देखेंगे, अशुभ को त्यागो नहीं और शुद्ध में कूद जाओ देखेंगे, संभव है क्या? अशुभ को संकल्प के साथ छोड़ना पड़ेगा। ये संकल्प शुभ व्रत कहलाते हैं, शुभ धर्म कहलाता है। इस शुभ धर्म को स्वीकार करके, कम से कम अंतर्मुहूर्त तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको स्वीकार किए बिना तो शुद्ध में जाया ही नहीं जा सकता, कोई रास्ता नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल है, कहीं भी शुद्धोपयोग में जाने का रास्ता नहीं है, शुभ से ही जाना पड़ेगा, एक ही रास्ता है। और इसीलिए सभी तीर्थंकरों ने, सभी मुनियों ने आज तक जो भी मोक्ष गए हैं, दिगंबर बने बिना नहीं गए हैं। ये सत्य है ना, दिगंबर बने बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो दिगंबर बनने का मतलब क्या रहा? शुभ धर्म को स्वीकार करना, अशुभ को त्यागना और शुभ को स्वीकार करना। तो शुभ को अंतर्मुहूर्त तक भले ही स्वीकार करो, लेकिन शुभ को स्वीकार किए बिना शुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। ये प्रकृति नियम है। जन्मते समय दिगंबर थे, कि वस्त्र आदि से पहन कर, वस्त्र आदि को, आभूषण आदि को पहन करके आए थे? नहीं, जन्म के समय दिगंबर थे। भगवान कहते हैं मरण के समय तक ऐसे ही रहो, बिगाड़ो मत इस स्वरूप को। बिगाड़ो मत। बिगाड़ना जो है ये हमारी कमजोरी है, बिगाड़ना हमारी कमजोरी। हम वीक हैं ना, कहीं ना कहीं वीक वीक। और ये वीक वीकनेस, वीक ये एक वीक तक नहीं रहता, ये तो जन्म जन्म तक चलता है। ये वीकनेस हमारा एक वीक का नहीं, अनादिकाल का है। 7 दिन का है क्या? ये अनादिकाल का है। आते समय दिगंबर, जाते समय दिगंबर, फिर बीच में क्यों अंबर? बीच में क्यों अंबर? बीच में बनते अंबर और भटक जाते हैं, बीच में ही गड़बड़ होता है। न इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं। जन्म लेते वक्त मरण भी हो जाए तो कोई भी जीव नरक नहीं जाता, और जन्म लेने के पश्चात वो दिगंबर ही रहता है या अंत में दिगंबर बनता है। तो अंत में दिगंबर बन जाए तो भी वह मरण, मतलब दुर्गति में नहीं जाता, नरक आदि नहीं जाता। देखो, द्रव्यलिंगी भी नियम से देवगति में ही जाते हैं, भावलिंगी तो जाते ही हैं, वो स्वर्ग भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं भावलिंगी। पर द्रव्यलिंगी भी देखो तो महिमा उसकी कितनी है, 10 परिग्रह को केवल त्यागा है, तो नियम से देवगति में ही जाने का नियोग है। जन्मते समय दिगंबर थे, मरण के समय भी दिगंबर। जन्म के काल में कोई नरक नहीं जाता, नरक जाने योग्य इतने संक्लिष्ट परिणाम होते नहीं। जन्म के समय कहाँ हम भवारंभ परिग्रहत्वम नारकशायुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को संग्रह करने की प्रवृत्ति जन्म के काल में किसी को होता है? तो जन्म लेते ही जो जीव मरते हैं ना, वो नरक नहीं जाते। अभी कपड़ा पहना ही नहीं, नरक कैसे जाएंगे? कपड़े पहनने वाले नरक जाते हैं। ये कपड़ा अच्छा लगा तो, अच्छा लगा तो एक दूसरा ले लिया, वो भी अच्छा लगा तो तीसरा ले लिया, इस प्रकार बहुआरंभ बहुआरंभ। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, अच्छा लगने लगता है। संग्रह प्रवृत्ति में हम बीच में पड़ते हैं, शुरू में भी नहीं, अंत में भी नहीं। हाँ, देवगति में जाता है नियम से। अगर 10 परिग्रह को त्याग दिया और अंत में भी त्याग दिया, तो भी वह देव गति में ही जाएगा।
दुख मानने की जरूरत नहीं है।
काय का दुख? हाँ हाँ, माँ बाप जो दुख करते हैं वो करना नहीं चाहिए, आपका कहना है ना? क्या पता चलता है माँ बाप को कि स्वर्ग में ही गया? हाँ, जाना हो तो पता चलेगा। तो किसी ने कह दिया, मान लो कोई भी दुख से बचते नहीं है, ये स्वार्थी हैं, स्वर्ग में भी जा रहे हो तो आपको रोकने के लिए तैयार है। आप मुनि दीक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाओ, अच्छा काम और स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन घर वाले रोते हैं, दुखी होते हैं, ये किसके लिए रोते हैं? अपने स्वार्थ के लिए मोह से रोते हैं। दुख नहीं मानना चाहिए, ये बात अलग है, परंतु दुखी होते ही हैं वो। और किसी के स्वर्ग जाते समय, संलेखना होते समय, दीक्षा लेते समय किसी के घर में कोई परिवार दुखी नहीं होता है तो समझना चाहिए वो बिरला ही, दुर्लभ ही ऐसा परिवार है। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है, इसलिए दुखी नहीं होता। तो ऐसे परिवार बहुत कम हैं, जाते समय रोने वाले ही ज़्यादा हैं। और वो कहते हैं कि हम क्यों रोते हैं मालूम? हम नहीं रोएंगे तो दूसरा क्या कहेगा? ये सामने वाला मर रहा है, परिवार का है, और मरण के काल में भी ये रोता नहीं था। यानी उसकी टीका करते हैं, उसकी टीका करेंगे इसलिए हमारी टीका न करे इसलिए रोना पड़ता है। यानी हमारे रोने में भी मायाचारी है। हम मायाचारी से रोते, रोना नहीं चाहते लेकिन रोना पड़ता है। हाँ, रोने वालों को तो कितने दयालु हैं देखो ना। ऐसे ही किराए पर रोना चाहिए। किराए पर रोना अच्छा है, किराए पर ही रोना चाहिए। किराए पर जो रोता है ना, वो ये चाहता है मैं तो निर्मोही बन गया, किसी को मरण करते हुए मुझे दुख सुख कुछ नहीं होता और मैं निर्मोही बन गया। निर्मोही बन गया तो वृत्ति के समान है, वो तो मुनि के समान है। मुनि महाराज को लाना चाहिए किराए से कोई मर गए तो, क्योंकि हम रो नहीं सकते। मुनि महाराज रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं ना। जैसे मुनि रोते नहीं वैसे श्रावक नहीं रोता है तो बहुत अच्छा है ना। और किराए पर से लाते हैं तो हानि भी क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वयं को मोह नहीं होना चाहिए, ये है जैन धर्म में ये लिखा है, जैन संस्कृति है, जैन सभ्यता है। जैन श्रावकों को ये आवश्यक है, कोई भी परिवार का व्यक्ति मर रहा है तो रोए ना, रोना नहीं आता है दो कारण से, नहीं आता है रोना दो कारण से। एक कारण ये है कि हमारे लिए, हमारे साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं था और वो रोता हुआ देख रहा है तो मरता हुआ देख रहा है तो वो कहता है मर रहा है ना, ठीक है मरने दो, तो इसको रोना नहीं आएगा। वो मर रहा है तो भी रोना नहीं आएगा। और मरते समय, मरने के बाद हमारे लिए कोई कहेगा, इसलिए किराए से रखना पड़ता है। रोने वालों को तीन चार लोगों को बिठाना पड़ता है, हाँ, ताकि पता चले कि हाँ घर में लोग रो रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं आपसे? आप मोही है कि नहीं? मोही है तो उनको खुशी। लोग ये देखना चाहते हैं, अज्ञानी लोग, मोही लोग, कि इस घर में मोही है क्या नहीं लोग। मोही हैं, मोही हैं तो वो खुश रहते हैं, और सभी लोग निर्मोही दिखते हैं तो उनको दुख होता है और वो उल्टा सीधा कहने लगते हैं, अरे इसका अपना इसका पिता मर गया और ये नहीं रो रहा है बेटा। आपको रोते हुए देखना चाहते हैं वो, और आप रो करके आपको बताना पड़ता है, डुप्लीकेट रो करके भी बताना पड़ता है कि हाँ रो रहे हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं उनके लिए नहीं। और यदि कहने वाला पिता का मरण हुआ और कहने वाला देखने आया था कि घर में कौन कौन रो रहा है और नहीं रो रहा है, वो रो देखना चाहता था, रो रहा है तो पिता से बहुत अच्छे संबंध थे और इसलिए रो रहा है, कहने के लिए हो जाएगा ना, इसलिए आया था। और देखने वाला आया और उसको देख करके उसकी आयु खत्म हो गई और वो भी मर गया। देखने के लिए आया था, किस लिए आया था, जो मरे हैं उनको नहीं देखना था। यहाँ पर कोई रो रहा है कि नहीं रो रहा है इसको देखने के लिए आया था, और वहां पर रोने वाला कोई नहीं मिला, और नहीं मिला, अरे घर में कोई नोए नहीं रो रहा है इसलिए वो मर गया। और वो मर गए तो ये जो नहीं रो रहे थे उसको देख करके रोना पड़ रहा है, अरे बेचारा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति, सरल था, हमारे पिता के मरण को देखने के लिए आया, ये कितना विशेष व्यक्ति होगा, कितना जुड़ा हुआ होगा, बेचारे यहां आना नहीं चाहिए था। मर गया, ये दुखी होंगे लेकिन उसको कोई दुख नहीं है। अज्ञानी जीव को मोही अगर मरता है तो दुख होता है, निर्मोही मरता है तो दुख नहीं होता। कोई भी नहीं रोते। मुनि महाराज का समाधि मरण होने पर कोई रोता है श्रावक? देखो, रोना दो तरह से होता है, एक मोह से रोना और एक निर्मोहता से भी वात्सल्य के साथ रोना। खुशी के आंखों आंसू आ सकते हैं। हम किसी का समाधि मरण करा रहे थे और बढ़िया समाधि मरण कराया और उसका बढ़िया समाधि मरण हुआ और वो सफल हुआ। सफलता मिलने की संभावना नहीं थी और ऐसे वैसे करते 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 सफल हो गया तो खुशी के आंसू आ सकते हैं। देखो, कुछ भी संभावना नहीं थी, असंभव बात भी इसने संभव कर लिया। हमारा भी मरण ऐसा ही होना चाहिए। मरण के प्रति जो श्रद्धा होती है, निर्मोह मरण के प्रति जो श्रद्धा होती है, संलेखना के प्रति जो श्रद्धा होती है, इस श्रद्धा के कारण से खुशी के आंसू आ सकते हैं, परंतु ये स्वार्थ के आंसू नहीं, ये धर्म के वात्सल्य के कारण से आंसू आ सकते। पर जब तक संलेखना मरण पूर्ण नहीं होता तब तक वो रोते नहीं, भूल करके भी आंखों में आंसू नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आंसू को देख करके उसके परिणाम विचलित हो सकते हैं। हमको देख करके हमारे ऊपर उनका मोह भाव उत्पन्न हो सकता है कि देखो हमारे वजह से ये अपने आंखों में आंसू ला रहे हैं, तो अनुराग उत्पन्न होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता संलेखना कराते समय तो धैर्य दिलाया जाता है, उत्साह दिलाया जाता है, सेवा की जाती है, धर्म की बातें सुनाई जाती हैं, उपदेश दिया जाता है, शास्त्र पढ़ा जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, स्तोत्र स्तुति स्तोत्र पढ़ा जाता है, भगवान की भक्ति कराया जाता है, उसके मन को धर्म में ही तल्लीन कराया जाता है। ऐसे निमित्त वाले लोग माहौल घर में चाहिए पड़ता है श्रावक को। और ऐसा माहौल नहीं रहता है तो वह घर छोड़कर सल्लिक ना लेता है, घर में नहीं लेता। फिर घर में सभी मोही हैं, अज्ञानी हैं, समझते नहीं हैं क्या करना क्या नहीं करना, कैसे सेवा करना, कैसे परिणाम रखना, ये समझते नहीं हैं धर्मात्मा के प्रति क्या करना चाहिए। तो वो धर्मात्मा क्या करता है, अपने घर को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? अच्छी तरह से संलेखना मरण को साधने के लिए, संलेखना मरण बिगड़ न जाए, निमित्त भी अच्छा मिले और परिणाम भी अच्छे रहे, इसलिए छोड़ता है। मुनि महाराजों को भी कह दिया अपने संघ को छोड़कर बाकी दूसरे संघ में जाकर के संलेखना ले, ये बताया है। और कहां पर ले? तो जहां पर रत्नत्रय होता है उसी स्थान पर जाएं। रत्नत्रय की निर्दोष साधना जहां पर कर चुके हैं वहीं पर जाएं, वहीं पर संलेखना ले, ऐसा नियम है। जो आत्म श्रद्धा आत्म साधना के प्रति अनुराग रखकर जिंदगी भर जिन्होंने रत्नत्रय को साधा है, अशुभ से बचा है और शुभ शुद्ध शुभ शुद्ध दो में जिनका जीवन व्यतीत हुआ है, शुभोपयोग में और शुद्धोपयोग में, ऐसे शुभोपयोगी मुनि का सानिध्य पाकर संलेखना मरण करना चाहिए। और जो ज्ञानी हैं, शास्त्रानुसार चलते हैं, उनके पास टाइम हो गया, हमारी अभी दृष्टि गई। शेष विषय कर लेंगे जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे। जय बोलो जिनवानी माता की जय, अजितनाथ भगवान की जय।